आगे जी 43 से 50 रुकू 8। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वलकद आतैना मूसल किताब, और इन अगले ज़माने वालों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब इनायत फरमाई जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत होकर आई थी, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। अल्लाह हमें भी इस किताब से नसीहत दिलवा दे। और तूर के मगरिब की जानिब, जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म अहकाम की वही पहुँचाई थी, ना तो तू मौजूद था और ना तू देखने वालों में से था, लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की जिन पर लंबी मुद्दतें गुजर गईं, और ना आप मदीन के रहने वालों में से थे कि इनके सामने हमारी आयतों की तिलावत करते, बल्कि हम ही रसूलों को भेजने वाले हैं, और ना तो आप तूर की तरफ थे जबकि हमने आवाज़ दी, बल्कि तेरे परवरदिगार की तरफ से एक रहमत है इसलिए कि तू इन लोगों को होशियार कर दे जिनके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं पहुंचा। क्या अजब के वो नसीहत हासिल कर लें अगर ये बात ना होती कि इन्हें इनके अपने हाथों के आगे भेजे हुए अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती तो ये कह उठते, कह हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की दावेदारी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहते हैं कि ये वो क्यों ना दिया गया जैसे दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ दिया गया था इसके साथ लोगों ने कुफर नहीं किया था? साफ कहा था कि ये दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं, और हम तो इन सब के मुनकर हैं। कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, मैं इसी की पैरवी करूँगा। फिर अगर ये तेरी ना माने तो तू यकीन कर ले कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं, और इससे बढ़कर बहका हुआ कौन है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो बग़ैर अल्लाह की रहनुमाई के। अल्लाह ताला मैं ख्वाहिशों की गुलामी से बचाए, बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो इसमें चंद बातें हैं नबी सल्लम की नबूवत की दलील की। पहली बात देखिए कि अरबों में नबी सल्लम पहले नबी थे, आपसे पहले अरबों के पास कुफर और शिर्क पर जमे रहने का हीला मौजूद था, क्या नबी नहीं आया? और अल्लाह ने दो दफ़ा इन आयतों में हमने पढ़ा है वमा कुंता, आप थे ही नहीं। यानी जब अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं आए थे तो आपको नहीं पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज इस मौजू को भी इतना मुख्तलिफ करके फ़िरको फ़िरकों में डालकर और न जाने कितनी बहसों का हिस्सा बना दिया। फिर इसी तरह लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तलीमात को भुला चुके थे, और बनी इसराइल के बाद अल्लाह ने अरबों पर भी इतमाम हुज्जत कर दिया, तो नबी का आना अरबों के ख़िलाफ़ हुज्जत बना कि अब तो नबी आ गए, अब तो मानो और अल्लाह की सुन्नत लिख लें। नेमत दिए बगैर नहीं आजमाता। जब तक हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, ऑप्शन नहीं होती, अल्लाह नहीं पूछता। बस आप देखिए कि हम इस वक्त ऑन साइट पे दौरे कुरान कर रहे हैं ना, अब ऑन साइट की चॉइस मिल गई ना, हुज्जत तमाम हो गई, जिसको सुनना है वो ऑन साइट पे आए। कोर्स ऑफर हो रहा है, इंशाल्लाह आपको आज ही खबर दे दूँ कि ऑनलाइन का कोर्स तो सबीरुल जन्ना चल ही रहा है माशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से कुछ नसीब लोग हैं जो इन दिनों में स्पेशली ताक रातों में धड़ाधड़ अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ताकि एक के बदले 70 कोर्स का अदर भी मिल जाए उनको। अल्लाह की रज़ा पाने के अमाल, नसीहत हासिल करनी है, नबी के बारे में गलूफ़ नहीं करना, अल्लाह के गज़ब से डराना है, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, कुफर नहीं करना, आयतों पर ईमान लाना है। आयत 51 से 60, अहले किताब के मोमिनीन की तारीफ़, रुकू नंबर 9। वलकद वसलना लहुमुल कौल, और हम बराबर पे दर पे लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल करें। जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई वो तो इस पर ईमान रखते हैं, जब उसकी आयतें इनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक होने पर हमारा ईमान है, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं, ये अपने किए हुए सब्र के बदले दोहरा अजर दिए जाएंगे, ये नेकी से बदी को टाल देते हैं, और हमने जो इन्हें दे रखा है इसमें से देते रहते हैं, और जब कोई बेहूदा बात कान में पड़ती है तो इसे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। अल्लाह हमें भी ये अखलाक सिखा दे। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हिदायत करता है, हिदायत वालों से वही बखूबी आगाह है, यानी उसको खूब पता है। कहने लगे अगर हम आपके साथ हिदायत के ताबेदार बन जाएँ तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। यहाँ नोट कीजिए, आज हम भी कहते हैं ज़्यादा ना दीन पे आ जाना, फिर शादी नहीं होगी, ये हिजाब विजाब छोड़ो रिश्ता नहीं आएगा, ये कोई दाढ़ी की ज़रूरत नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें इमिग्रेशन में मसला होगा। बिल्कुल यही बात वो कहते थे, आज भी लोग कहते हैं 3 पे आएंगे, हाय दुनिया चली जाएगी, वो भी यही चाहते थे। तो फिर क्या कहना है, नहीं में हैं को कहिए कि नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा 3 पे आने से, जो खैर है वो हमें मिल के रहेगी, क्योंकि उसर में युसर है। क्या हमने इन्हें अमन अमान और हुरमत वाले हरम में जगह नहीं दी, जहाँ तमाम चीज़ों के फल खींचे चले आते हैं रिस्क के तौर पर हमारी तरफ से, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगी थी। अब ये हिस्सा जो हमारे इस पारे के थीम को मैच करता है, एक एक लफ्ज़ पे आप खुद गौर करिए, ऐशो इशरत में इतराना, हम तो नहीं है। एक होती है लग्जरी और एक होती है ट्रांसग्रेशन, रिबेलियसनेस। दुल्हन और दुल्हा को कुरान के साए में रुख्सत करते हैं और पूरी शादी में इस्लाम को रुख्सत कर देते हैं, पूरा इस्लाम रुख्सत, सुन्नतें रुख्सत, हया रुख्सत, और कुरान के बगैर रुख्सती होनी कोई नहीं। ये है इनकी रिहाइश की जगह जो इनके बाद बहुत ही कम आबाद की गई, और हम ही हैं आखिर सब कुछ के वारिस। क्यों गम करते हो माल का, आज का दिन अच्छा गुजर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया तेरी ज़िंदगी में सुबह हो तो शाम का इंतज़ार ना कर, शाम का वक्त आए तो सुबह का इंतज़ार ना कर, और अपना शुमार जिंदों में नहीं मुर्दों में कर। जिएंगे तो देखेंगे शाम के लिए कुछ है कि नहीं, तो फिर देखिए आपके मुल्क की गुरबत दूर होती है कि नहीं होती। ये बात नोट करने की है। हम विरसा जमा करते हैं, अल्लाह कहते हैं नाहनुल वारिसून, तुम्हारा सारा कुछ एंड पे मेरे पास आना है, तुम्हारी विल एंड पे मेरे पास आ जानी है। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि इनकी बड़ी बस्ती में कोई अपना पैगंबर ना भेज दे। इससे पता चलता है कि दीन का काम खुली जगहों पे, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे होना चाहिए, क्योंकि अम्बिया कराम टाउन्स में, सबर्ब्स में नहीं आए थे, बड़े बड़े मेजर सिटीज़ में आए थे, क्योंकि ईजी होते ना, अप्रोचेबल होते हैं। आज ज़रा सा गली के अंदर ढूंढना पड़े, कहते मिला ही नहीं, जा ही नहीं सके, और वो फलां की न्यारी खाने के लिए अंदरूने शहर में चले जाएंगे, बंस रोड की बन कबाब खाएंगे, गली में सड़क पे वो गाड़ी फंस गई तो वहाँ गाड़ी छोड़कर रिक्शा ले लेंगे, पैदल चले जाएंगे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है ना। तो अम्बिया कराम को हमेशा प्रोमिनेंट प्लेसेस पे अल्लाह ने रखा कि लोगों ने एक और बहाना बना लेना, मैं मिला ही नहीं। अच्छा, मैं हमेशा ये ख्वाहिश भी करती हूँ और मेरी ये दुआ हर जगह पूरी हुई है, ज़रा जहाँ काम करते हैं वहाँ दिल भी होता है, जगह मिले, बंदा इज्जत से काम करता है, अपनी जगह होती है, तो जगह लोग देख रहे होते हैं ना, तो मैं इनको साफ कह देती हूँ देखना मिलना आपको मेन रोड पे। और माशाल्लाह अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट बने हैं उसमें काफ़ी हद तक ये बात पूरी हुई है, और जहाँ पूरी नहीं हुई वहाँ भी पूरी होगी तो काम बनेगा, ये भी बता दो। हिदायत का पैगाम बड़ा क्लियर कट जगहों पर होना चाहिए, ताकि लोगों को दूर से दिख रहा हो मीनारे पाकिस्तान की तरह, कोई ये तो ना कह सके कि हमें जगह नहीं मिली। ये है बात इस आयत में। फिर क्या फरमाया, जो इनको हमारी आयतें पढ़कर सुना दे, और हम बस्तियों को इसी वक्त हलाक करते हैं जबकि वहाँ जुल्म और सितम पर कमर कस लें, और तुम्हें जो कुछ दिया गया है सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान और इसी की रौनक है। हाँ अल्लाह के पास जो है वो बहुत बेहतर और देर पा है, क्या तुम नहीं समझते। नोट कीजिए माल की हैसियत, सब चला जाएगा, ये दुनिया की चीज़ें हैं। अल्लाह के पास क्या खैरों वाबका, तुम्हारे पास क्या यनफत, उधर क्या बाकी रहने वाला। तो आयत 52 से 55 में देखिएगा जो बातें हैं। पहली बात है कि दोहरे अजर की बात थी इसमें, मर्रतैन, तो किस किस को दोहरा अजर है, सहाबा के लिए तो हर काम का ही दोहरा तेहरा अजर है, क्योंकि उन्होंने मुश्किलों के वक्त में नबी का साथ दिया। वो यहूद जो मुसलमान हुए उनको दोहरा अजर मिला, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग, फिर हबशा वालों को दोहरा अजर मिला, दो हिजरतों का अजर। सब्र के साथ अंबिया और तमाम इल्हामी किताबों में साबित कदम रहे, बुराई के जवाब में दरगुजर करने से काम लेने वाले थे। अल्लाह हमें भी ऐसे काम करने वाला बनाए जिसका अजर दुगना तिगना हो। क्या करना है, नसीहत हासिल करनी है, किताब पर ईमान लाना है, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करना है, और अल्लाह की आयत पढ़ के सुनानी है, जाहिल नहीं बनना, बेहूदा बातों से मुंह मोड़ना है। और रुकू नंबर 10 आयत 61 से 75, असल सरमाया तो आखिरत की कामयाबी है, अफमई वादना हुवादन हसना, क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया है जिसे वो कतन पाने वाला है मिसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने दुनिया की जिंदगी की कुछ यूं ही सी चीज़ें दे दी। फिर बिलाखर वो क़यामत के रोज़ पकड़ा बांधा हाजिर किया जाएगा, प्रिजनर कैदी, माल का कैदी, दुनिया का कैदी। और जिस दिन अल्लाह ताला इन्हें पुकार कर फरमाएगा, तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक ठहरा रहे थे कहाँ हैं, यानी कहाँ गए वो तुम्हारे बैंक बैलेंस जिनको दे के तुम मुझसे छूट जाओ। सारे माबूद जो होते हैं ना, वो इंसान जब बुत नहीं होते, आज का बुत डॉलर, ओ माइटी डॉलर, बंदा है नफ्स का और बंदा है गुलाम है डॉलर का। आज डॉलर की गुलामी, पाउंड की गुलामी, रियाल की गुलामी, अल्लाह कहता है ये सब चला जाएगा, ये इधर रह जाएगा तो तुम चले जाओगे या दुनिया में ही चला जाएगा। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो क्या कहेंगे, फरमाए जिन पर बात आ चुकी वो जवाब देंगे कि हमारे परवरदिगार यही हैं वो जिन्हें हमने बहका रखा था, हमने इन्हें इस तरह बहकाया जिस तरह हम बहके थे, हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। अब बताइए, वो खुद ही इनकार कर रहे जिनके नाम पर जाकर मेले ठेले करते थे, वो कह रहे हमने तो नहीं कहा था ये कुछ करना, ये अपने ही कुछ इनके कारोबार थे, नाम दीन का रखते थे, अंदर अपना कारोबार था। कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुला लो, वो बुलाएंगे लेकिन इन्हें वो जवाब तक न देंगे और सब अजाब देख लेंगे, काश ये लोग हिदायत पा लेते। इस दिन इन्हें बुलाकर पूछेगा तुमने नबियों को क्या जवाब दिया, उस दिन इनकी तमाम दलीलें गुम हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक न करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए होगी कोई नहीं, झूठे पड़ रहे हैं। हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक काम करे, यकीन है कि वह निजात पाने वालों में से हो जाएगा। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है, इनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ही के लिए बाकी है, वो बुलंदतर है हर उस चीज़ से जो के लोग शरीक करते हैं। इनके सीने जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, आपका रब सब कुछ जानता है, वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, दुनिया और आखिरत में इसी की तारीफ है और इसी के लिए फरमा रवाई है और इसी की तरफ तुम सब फेरे जाओगे। कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर अल्लाह तुम पर रात ही रात क़यामत तक बराबर कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन माबूद है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी ले आए, क्या तुम सुनते नहीं हो। पूछिए कि ये भी तो बता दो कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह के कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल कर सको, क्या तुम देख नहीं रहे हो। सर्दियों की लंबी रातें ख़त्म हुए नहीं होती, और अगर फिर ख़त्म ही ना हो, दुनिया के वो हिस्से याद कीजिए कि जहाँ गर्मियों में 2-3 घंटे की रात और सर्दियों में 3-4 घंटे का दिन, और ऐसी भी जगह के जहाँ रात ही रात और दिन ही दिन कई कई महीने। घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस कोई नहीं कर सका आज तक, इतना पैसा उन मुल्कों में, जाकर फटाफट एक मशीन लाएं और जल्दी से उसको सूरज को घुमा दे, नहीं कर सकते। इसने तो तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकरर किए कि तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोज़ी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। क्या नुक्ता है इसमें आपके थीम का, कमाने के औकात दिन में होने चाहिए रात में नहीं। किसी ने आप में से बताया कि आजकल रात 3 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। चलिए, ईद की तैयारियां, चूड़ियां, मेहंदियां, सारी रात जो जागेंगे, फजर पढ़ के सोएंगे तो जोहर कितनी खतरे में है, क्योंकि दुकान तो अब खुलनी है जाके कोई असर के बाद, शायद मगरिब के बाद ही खुलती होंगी। कभी सोचिए हम अल्लाह से कितना मुकाबला करते हैं, और फिर कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग की हो रही है। सूरज जागे आप भी जागिए, सूरज सोए जाकर आप भी सो जाइए, और तरक्की याफ्ता मुल्कों में आज भी ऐसा ही होता है। और शुक्रगुजार हों, रोज़ी जो मिले उस पर शुक्र करेंगे तो क्या होगा, नहीं में है होगी, अल्लाह थोड़े में भी बरकत देता है। और जिस दिन इन्हें पुकार कर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ हैं, और हम हर उम्मत में से गवाह कर लेंगे कि अपनी दलीलें पेश करो, बस इस वक्त जान लेंगे कि हक अल्लाह ताला की तरफ है اور جو کچھ بختان وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا جب وہ سب کھو جائیں گے. کامیاب کون ہے؟ توبہ کرنے والا, ایمان لانے والا, عمل صالح کرنے والا, اللہ کے چنے ہوئے. آیت 67-68 سے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کو مجھے کامیاب ہونا ہے تو مال کمانے کے ساتھ ساتھ توبہ کمائیے, ایمان کمائیے, عمل صالح کمائیے, اور پھر اللہ آپ کو چن لے گا انشاءاللہ. آگے ہے اللہ کی رضا کے نکات. ہدایت اختیار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, ایمان لانا ہے, شکر ادا کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, اور نیک اعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر آیات 67-82 رکو نمبر 11, نعمت قابلیت کا ثمرہ نہیں بلکہ اللہ کی دین ہے. یہ ہے آپ کے پارے کا تھیم. آپ کو مجھے ہماری قابلیت پہ نہیں مل رہا, اللہ کی عطا پہ مل رہا ہے. اور صحابہ کرام یہ بات بہت اچھی طرح جان گئے تھے, قارون کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. آئیے پڑھتے ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. ایک بار اس کی قوم نے کہا, اترا مت, اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا, اور جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ. یہ ہے تھیم آیت 77. اس کی تفسیر سنیے گا تو آپ کو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہمارے مال کے بارے میں. پھر سن لیجئے, جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ, اور اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھول جا, جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا سلوک کر, اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو. یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے. یہ ہے نسخہ. دنیا بھی اپنی اچھی رکھیے, جائز حلال طریقے کی, اور جو اللہ نے نعمتیں دیے نا اس میں رہ کر احسان کے درجے پہ کام کریں. اچھی نعمتوں والے گھر میں رہیں, اچھے اچھے کام کریں. چھوٹا گھر ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کفایت کر جائیں گی, بڑا گھر ہے تو بڑی بڑی نیکیاں کیجئے. تھوڑی سی نعمتیں تھی, نہیں 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 تھا تو تھوڑے تھوڑے کام بھی ٹھیک رہیں گے. اللہ نے آپ کو زیادہ زیادہ دی ہے تو آپ سے بڑے نیکیاں ہوں گی. اس پہ ایک جملہ لکھیے, جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جائے گا کل اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پہ راضی ہو جائے گا, اور جس کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دیا ہے کل اس سے تقاضا بھی زیادہ کا ہوگا. اور بڑی سمپل مثال ہے, آپ کسی گروسری اسٹور میں چلے جائیں, چھوٹی سی وہ ریڈ کلر کی باسکٹ پکڑ لیں جس میں ایک دو چیز آتی ہے, جلدی سے لے کے جب آپ کاؤنٹر پہ آئیں گے جلدی صاف ہو جائے گا, تھوڑے پیسے دے کے نکل جائیں گے, لائن بھی لمبی نہیں ہوگی. اور جس نے بڑی سی ٹرالی نکالی اور بھری, خوب بھری خوب بھری, اس کو کس لین میں جانا پڑے گا؟ زیادہ والی لین میں. یہاں تو ایک ہی ہوتی ہیں, باہر الگ ہوتی ہیں. جہاں زیادہ زیادہ والے کٹھے لو جی سارے ایک جیسے ایک جگہ جاؤ. وہ بیچارہ جس نے ایک دو چیز لیے وہ کہ تمہارے پیچھے لگے, اس کو الگ لین دے دیتے ہیں. جاؤ بھائی, لیس دین 10 آئٹم میں ایک رو ہوتی ہے. اچھا اب کیا ہوا, جس نے زیادہ سامان لیا تو بل زیادہ, ٹائم زیادہ, ایفرٹ زیادہ, گاڑی میں رکھنا پھر نکال کے سمیٹنا زیادہ. بس یہی ہوگا آخرت میں. کون فائدے میں؟ تھوڑا کہ زیادہ؟ نہیں والا فائدے میں ہے. ہیں والے نے تو ادھر سامان تلوانا. کوئی سناتا ہے کہ کہانی کے ایک بابا بڑا غریب تھا بیچارہ, ہکا لے کے ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا, جدھر بیٹھا لوگ کھانا پوچھتے تھے روٹی ملتی تھی کھا کے اٹھ جاتا تھا. ایک دن خبر آئی کہ سیلاب آ رہا ہے قوم میں, سب لوگوں نے قیمتی چیزیں اٹھاؤ, سامان پوٹلے گٹلے اٹھاؤ جی, وہ وہاں پہنچ جائیں نہیں تو ابھی سب کچھ ڈوب جائے گا. جو ہلچل مچی تو اس میں کسی نے اس بابے کو دیکھا بڑے آرام سے بیٹھا ہکا پی رہا. کہنے کا, بابا بابا سیلاب آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے جلدی کرو. کہا کیا ہوا؟ کہا سامان پکڑو جلدی کرو چیزیں چلی جائیں گی. تو کھڑا ہو کے نا کپڑے جھاڑ کے کہتا چلو. کہا کدھر؟ کہاں؟ کہتا میرا تو گھر بار ہی کوئی نہیں, میرے پاس یہ ہکا ہے جدھر بیٹھتا ہوں ملتا ہے, یہ کپڑے ہیں جو پہنتا ہوں کچھ دھو دیتا ہے تو پہن لیتا ہوں. تو کہنے لگا کہ غربت نے آج ہی مزہ دیا ہے. یہ نہیں نے اس حساب کتاب کے بل والے دن مزہ دینا ہے, اور ہیں والے بڑے پریشان ہوں گے. الا یہ کہ دنیا میں ماشاء اللہ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنا حساب کر کے احسن کما احسن اللہ علیک پہ عمل کرتے ہیں. بس اتنا فرق ہے. دیکھیے حساب اور چیز ہے, عذاب اور چیز ہے. ہم اس کو گڑ مڑ کر کے نہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. حساب دے, کلیئر ہو کے نکل جائیں, ٹائم لگ گیا کوئی بات نہیں دے لیتے ہیں. अगर अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी, अल्लाह ने आपको सहूलतें दी, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका ब्रेन इतना अच्छा चलता है, आप बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। और कुछ सुस्त ना अपने जोगे ना किसी जोगे, दुनिया में बहुत सारे लोग बड़े लोगों को पाल रहे, फ़ायदा दे रहे हैं। अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ तो सैकड़ों मुलाजिम बेचारे ले ऑफ हो जाएंगे। तो दुनिया का निज़ाम इस असूल पर चल रहा है कि दुनिया का हिस्सा भी ले लो और आखिरत का, हाँ जो नहीं करना वो फसादी नहीं बनना। और वो फसाद है जो भी आपको मैंने बताया कि रुखसती में इस्लाम रुखसत, ये फसाद है। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है उस वक्त औरतों का, हुसन का, पैसे का, कपड़ों का, जेवरात का, और बन ठन के सबके अंदर फिर रहे, ये जुल्म है। इस पे उम्र कैद इनको मिलनी चाहिए कि इन्होंने रिबेलियसनेस शो की कि जिस अल्लाह ने इनको हुसन, जवानी, दौलत, कपड़े दिए, ये उसी की मुखालफत में आ गए। अदरवाइज नेमतों को इतना एक्सपोज ना करें तो कोई बुरी बात नहीं है। खैर, कारून की भी ज़रा सुनिए वो क्या कह रहा है। कारून ने कहा, ये सब कुछ मुझे मेरी अपनी समझ की बिना पर ही तो दिया गया है, ये है एक खराबी, वी डिजर्व इट। हाँ जी, हमने बच्चों को पढ़ाया है तो अब उन्होंने डॉक्टर नहीं बनना था जी, हमने मेहनतें की हैं तो फिर अब अच्छे नहीं होंगे जी, मेरे मियाँ साहब ने अकेले इतना काम किया तो मिल लगी और अब तो इतना काम है ना। ठीक है, करिए, लेकिन क्या कहिए, हाजा मिन फ़ज़्ल रब्बी। क्या इसे ये अब तक मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत सी बस्ती वालों को गारत कर दिया जो इससे बहुत ज़्यादा कुव्वत वाले और बहुत बड़ी जमा पूंजी वाले थे, यानी जो गए थे लेकर क्या साथ गए। और गुनाहगारों की बाज़पुरस उस वक़्त नहीं की जाती। बस कारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला तो दुनियावी ज़िंदगी के मतवाले कहने लगे, काश के हमें भी किसी तरह वो मिल जाता जो कारून को दिया गया है। हम क्या कहते हैं, जो मेरी दोस्त को दिया गया, जो मेरी नंद को दिया गया, जो भाभी के पास है, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। इसको छोड़ दें, आज से नियत करें, किसी को दे के हसरत नहीं करनी, रश्क नहीं करना। उसको वो चीज़ सज रही है, आपको नहीं सजनी, हर चीज़ भी नहीं सजती। आप देखिए लोग कहते बड़ी सी गाड़ी, वे अंदर से निकला कौन है, आपका गेटअप नहीं है वो कि आप इतनी बड़ी गाड़ी में से निकले, तो बेहतर नहीं है कि आप ऐसी ख्वाहिश ना करें। देखिए ना, जब लोग कहते हैं ये आपका घर है, अच्छा आप मुझे बताइए इज्जत है कि बेइज्जती। अच्छा, आप गए किसी शादी में खूब साज संवर के मेकअप करा के, लोग कहते हैं आज तो पहचान ही नहीं जा रही, अल्लाह के बंदो इससे बड़ी बेइज्जती को किसी की कर सकता है, आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, ये क्या है। अल्लाह के बंदो, यही तो मसले है हमारे, ये तारीफ है। और वो जो आपकी खूबसूरत सी तस्वीर सजी हुई है ड्राइंग रूम की दीवार पे, आपने अपनी यादगार खूबसूरत दिन का आखिरी लम्हा, तो बच्चा कहते हैं मामा ये आप है, अच्छा मामा ये बाबा है, अब क्या हो गया बाबा को, आप तो बड़े चौ से तस्वीरों के एल्बम सजा के रखते हैं तो बाद में बेइज्जतियां कराते हैं। अपने लिए पहनिए, अपने लिए घर बनाइए, अपने लिए कंफर्टेबल गाड़ी लीजिए, अपने लिए महंगा जूता ले लीजिए, आपको जूती चुभ रही है, एड़ी उसकी नीचे से ऊपर जा रही है और आप पहन के टेढ़े टेढ़े फिर रहे हैं कि मुझे हील वाली जूती पहननी है, तो मौज तो आएगी ना। ये ना करिए, रिलैक्स, बी नेचुरल। आप सुन रहे हैं ना, सहाबा किराम के कितना कुछ था, तसन्नो नहीं थी, तकाबुल नहीं था, बनावट नहीं थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े अमीर थे, कभी एक रिवायत आपको पूरे कुरान सुन्नत में नहीं मिलेगी कि दूसरे सहाबा ने जाकर रश किया हो कि वाह अब्दुर्रहमान आपके उस क्या। अमूमन क्या कहते थे, अबू बकर की नेकियाँ, उमर की नेकियाँ, फलां की नेकियाँ। है कोई अमीर तो है अपने घर में, खुश रहे। देखिए चाहिए ये, यहाँ इस जुमले से सारा समझ लें, दूसरों को देख के खुश हों, उनके अच्छे कपड़े देख के खुश हों, उनके अच्छे घर को देख के खुश हों, और दुआ दें माशाल्लाह। नया कपड़ा पहना देकर क्या कहना चाहिए, कहाँ से लिया, क्या कहना चाहिए, कितने के, एल्बिस जदीदन एश हमीदन ममुत शहीदन। नए कपड़े पहनो, तुम्हारी तारीफ हो और तुम्हें शहादत की मौत है। और एक जगह आता है कि तुम नए कपड़े पहनते ही रहो, इसको पुराना करो और तुम्हें और भी मिले। और किसी ने एक बात मेरे कान में डाल दी कि अब तो माएँ बच्चों को ये पूरी दुआ भी नहीं याद कराती क्योंकि शहीद ना ये हो जाए, एल्बिस जदीदन ए शहीदन, बस 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 मुत शहीदन की बात नहीं करनी। ये जब हमारी कौम का हाल होगा तो आप मुझे बताइए कि उनके दिन कैसे फिरने हैं। तो दूसरों को दुआएं दिया करें। शादी में जाएंगे किसी तो ये दुआ याद करें, इसके पर्चे बांटे जाकर शादी में कि अल्लाह के बंदो एक दूसरे को देकर ये दुआएं दो। उस वक्त तो हम पता नहीं क्या कुछ सोच रहे होते हैं। ये तो किस्मत का बड़ा धनी है। हम भी बार बार लोगों के ज़ाहरी टिप टॉप को देखकर ये सोच लेते हैं, लेकिन आपको क्या था अंदर से वो कितना दुखी है। चिराग तले अक्सर अंधेरा होता है। बड़े दौलतमंद लोग किसी एक रोग की वजह से बड़े दुखी होते हैं। अब दूसरा, आप जैसे खूबसूरत लोगों का जुमला सुनिए, कारून की दौलत देकर जी इल्म इन्हें समझाने लगे कि अफसोस, बेहतर चीज़ तो वो है जो बतौर सवाब उन्हें मिलेगी जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे और नेक अमल करें। हाँ, ये बातें उन्हीं के दिल में डाली जाती हैं जो सब्र करने वाले हों। क्या कुरान पढ़ने के बाद ये ठहराव नहीं आ जाता? अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार हमने इसे इसके महल समेत ज़मीन में धंसा दिया और अल्लाह के सिवा कोई जमात इसकी मदद के लिए तैयार ना हुई, ना वो खुद अपने बचाने वालों में से हो सका, कोई इंश्योरेंस कंपनी उसकी मदद के लिए नहीं आई, कोई फ्रेंडशिप सर्कल में से उसको बचाने के लिए नहीं आ सका, कोई उसके लिए जो बड़े बड़े दावे करता था नहीं आ सका। और जो लोग कल इसके मर्तबे पर पहुंचने की आरजूमंदियां कर रहे थे, वो आज कहने लगे कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी। अगर अल्लाह हम पर फजल ना करता तो हमें भी धसा देता। क्या देखते नहीं हो कि नाशुक्रों को कभी कामयाबी नहीं होती? तो ये था जी सहाबाए कराम का तर्ज़े अमल माल के बारे में। मालदार साहबा का माल के बारे में तर्ज अमल बमुकाबिल कारून। कारून माल पे गरूर करता था, मालदार साहबा कराम शुक्रगुजारी करते थे। कारून दुनिया और आखरत में नाकाम रहा, मालदार साहबा कराम दुनिया और आखरत में कामयाब रहे। कारून को माल जमा करने की हिरस थी, मालदार साहबा को ज़रूरतमंदों पे खर्च करने का शौक था। कारून खर्च करने की बजाय दिखावा करता, ज़मीन में धंसा दिया गया। मालदार सहाबा ने आखरत कमाई, दौलतमंद होने के बावजूद भी आमाले सालेह पर तवज्जो दी। तो आपको मुझे चूज़ करना है, हमारा रवैया कौन सा है? आज तो पक्की नीयत करके उठेंगे कि बदर नहीं आएगा ज़िंदगी में इंशाल्लाह। क्या करना है? इतराना नहीं है, बदर नहीं, शो ऑफ नहीं, दिखावा नहीं, लोगों को जलाने के लिए नहीं पहनना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं पहनना। अब वो देखते हैं, उनकी मर्जी है, आपने नहीं दिखाना। और कभी मुंह भर भर के तारीफें भी नहीं करनी, किसी की तारीफ करना उसको कुन छुरी से ज़िबा करना है। माशाल्लाह कह दे, दुआ दे दे, इल्विस जदीदन कह दे, मुत शहीदन कह दे, और मुत शहीदन के साथ इश हमीदन कह दे। दिलों में मोहब्बत आती है, इससे कदूरत ख़त्म हो जाती है। फिर एहसान करना है, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क से आखरत का घर तलाश करना है, सब्र करना है, नेक अमाल करने है और ईमान लाना है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक दे। अब आखिरी रुकू है सूरत कसस का, रुकू नंबर 12, 83 से 88। तिल कद्दारुल आखिरतु नजलुहा, नबियों का काम अल्लाह की तरफ बुलाते ही रहना है। आखरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर करते हैं जो ज़मीन में ऊंचाई बड़ाई और फ़ख्र नहीं करते, ना फसाद की चाहत रखते हैं, परहेजगारों के लिए नहायत ही उम्दा इंजाम है। इस आयत का मैं एक सिंपल सा वर्जन दूं, जो कहे कि मुझे वोट दो उसको नहीं देने, जो कहे कि मुझे बड़ा बनाओ उसको बड़ा नहीं बनाना। अल्लाह के नबी की हदीसें भी यही कहती हैं। अबू बकर ने नहीं कहा था मुझे खलीफा बनाओ, ज़बरदस्ती हज़रत उमर ने आपका नाम लिखा दिया और सो ऑन। जो शख्स नेकी लाएगा इसे इससे बेहतर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे बदअमाली करने वालों को इन्हीं के अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब उसे बखूबी जानता है जो हिदायत लाया और उसे भी जो खुली गुमराही में है। आपको तो कभी ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल फरमाई जाएगी, लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरा। अब आपको हरगिज़ कुफार का मददगार नहीं होना चाहिए। ज़रा सा रुकिए आयत 86 पे। क्या आपने कभी सोचा था आपको किताब मिलेगी? आप में जिन्होंने पहली दफ़ा इस वक्त दौरे कुरान ज्वाइन किया है, क्या आपने सोचा था कुरान में इतने डिफरेंट टॉपिक हैं, इतने ख़जाने हैं? और जो माशाल्लाह कुरान के कोर्सेज पे कोर्सेज कर चुके हैं, क्या आपको लगता था कुरान में इतना कुछ है? अल्लाह नबी को कह रहे हैं आपने तो कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल यही बात लिख लीजिए, उसर में युसर। इल्म हासिल करने के दिन बड़े मुश्किल होते हैं, सब्र ही सब्र, सब्रे महज, पाबंदियाँ, शराइत, डिसिप्लिन। ये जो हम आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं ना, उसमें हम आपको कोई नॉलेज देने का दावा नहीं कर रहे होते, वो तो नेट भरा पड़ा, जाइए और ले लीजिए। नहीं, आपको डिसिप्लिन किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ लाइबिलिटीज, कुछ पाबंदियाँ, ताकि आप ट्रिम हो सकें और अफराई तमन तखत इलाहु हवाहु की कैटेगरी से नीचे निकले और अल्लाह के बंदे बन सके। तो यहाँ भी यही बात बताई जा रही है, ख्याल रखिए कि ये कुफार आपको अल्लाह ताला की आयतों की तबलीग से रोक न दें। इसके बाद कि ये आपकी जानिब उतारी गई तो अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर्क करने वालों में से न हों। अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद ना पुकारिए, सिवाय अल्लाह ताला के कोई और माबूद नहीं। हर चीज़ फना होने वाली है मगर इसका चेहरा, और इसके लिए फरमा रवाई है और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो क्या सीखा? ज़मीन में बड़ा बनकर नहीं रहना, फसाद नहीं करना, अल्लाह ताला से डर के रहना है, रब की तरफ बुलाना है, कुफार का मददगार नहीं बनना, नेकियां करना है। खुलासा ले लीजिए, पूरी सूरत कसस आपको माल और माल की बेहतरीन बांट का तरीका सिखा गई। उस्माने गनी और फिरौन के माल के बारे में तर्ज अमल देखिए। फिरौन मालदार था, दुनियादार था, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु मालदार थे और दीनदार थे। फिरौन को माल मिला, बादशाहत मिली, मोमिना बीवी मिली, आसिया अलैहिस्सलाम, मगर आखिरत में नाकाम। उस्माने गनी को माल भी मिला, खिलाफत भी मिली, मोमिना बीवियाँ भी मिली, और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब रहे। फिरौन जालिम हुक्मरान था, हजरत उस्मान बड़े सॉफ्ट हुक्मरान थे। रियाया के तबकात बनाए फिरौन ने, उस्मान ने बिखरी उम्मत को जोड़ा। इनके दौर में फितने जो थे उसका सदे बाप किया गया, कुरान को जोड़ा। फिर फिरौन की लाश को इबरत का निशान बनाया गया। हजरत उस्मान की शहादत के मौके पे अल्लाह ने फसयकफीकहुमुल्लाह पहले पारे के आखिर में जो आयत है उसको प्रिजर्व कर दिया। आज भी इस्तांबुल के एक अजायब खाने या जहाँ भी चीज़ें होती हैं वहाँ वो मुसहफ़ उस्मानी रखा है कि हज़रत उस्मान के छींटे उस पर मौजूद है। वहाँ पानी में डूबा, इधर अल्लाह ने खून को बता दिया, और उनकी सारी कोशिशें, उनका माल दीन और मुसलमानों के काम आए। आइए अपना मुहासबा करते हैं, क्या मैं लोगों के सामने इतराती तो नहीं? क्या मैं अपनी दौलत और इल्म की वजह से तकब्बुर तो नहीं करती? क्या मैं दूसरों को हकीर तो नहीं समझती? और अगर कोई छोटा सा भी जरासीम है तो यही दुआ करते हैं अल्लाह उसको निकाल के फेंक दें।